पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुं चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाभ्रे गौरविशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गश्यामलिं चटाविरमितो मण्डीकृत्यन्तीवरं जडं जागुडरोच संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिन सत्तामाभिरामोदरम् राधास्कन्द निवेशितोज्ज्वलभुजं प्रपूज्य चरण श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत मामन गोस्वामी महाराज और प्रपूज्य चरण श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिवेकम महाराज जी के पावन चरित्र के संबंध में दो एक वक्ताओं ने केवल पुष्पांजलि अर्पित की। अभी मैं और भी कुछ वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि वे लोग परम पूज्यपाद वामन महाराज जी के पावन चरित्र से वर्णन करके उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज जी पहले कुछ बोले ठीक है बोलो तो तात्पर्य सभी लोग 10 मिनट से 15 इसे नहीं अधिक नहीं कारण बहुत लोग हैं।
बांग्ला से ही बोल महाराज जी उसको जिज्ञेस करेছিলাম গুরু মহারাজ অনেক বাটে আছে কি ভিতরে চলে যায় কেন তখন যে বললেন দেখো তোমার ছোট একটা গল্প যদি মনে রাখতে তাহলে বুঝতে পারবে কেন যায় তবে কেন তখন বললেন যে হনুমান উনিও বাঁদরপুর এসেছেন আর যারা কেউ বাঁদর খেলাবে না তারা মানুষ গুরু দুইটা কি এক হলো সেরকম যার যেমন স্মৃতি সে সেভাবে মাটি থেকে আবার চলে যায় তুমি বললেন কিসনে গিরিং খালা কিসনে গিরিং খালা কই কিয়া বানি কই শিখা কই খালা গিরি দা কা কই শিখা কই কিয়া বানি কিয়া কোন শিখা না তো মেনে কিয়া চলি সেই বংশের বাবা আমি দিয়া কি চলি মে পুছা আমি জিজ্ঞেস করলাম আমি তারপর যাবি গুণরে বললেন দেখো যখন ভগবান রামচন্দ্র বনবন করেছিলেন লক্ষ্মণ কে সতীশে লাগায় তখন সুসেন বাবু হনুমান নিয়ে এলেন সুসেন বাবু বললেন যে রাত্রির মধ্যে যদি কেউ বন্ধবাদন পর্বত থেকে দড়ি উঠে সর্বকালীন মৃত সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারে কি অস্থি সঞ্চারে নি এই চার প্রকার দড়ি উঠে এনে দেয় একটি ঔষধ তৈরি করে আমি পাঠাতে পারি কিন্তু সূর্য হলে পাঠার কোনো উপায় নাই হনুমান একা ওখানে গেলেন
আমাদের জায়গা তো বিদেশ হবে তো মারে খুব হয়ে গেছে আমার विवाह और उत्सव आनंद उत्सव
विपरीत शब्द एक विरह और आनंद कैसे इंद्र तथा भी वैष्णव जगत की परिभाषा विशिष्टकारी है जहाँ पर गुरु विष्णु की स्मरण गुरु विष्णु जी का उन्नत अभिमान जीवन चरित्र तथा और आज लोग श्रवण करके और इस साथ ही साथ उनके लिए हम लोग कुछ विरह प्रकट कर रहे हैं। श्री वसुदेव अपने भाषण में यह बताया केवल बच्चों के आहार अपायक करने चले जाए खाना पीने में चले जाए तो हम लोग कहां गुरुदेव के लिए उनकी स्मृति उनकी विधि कैसे करेंगे। इसलिए जितने कम हो सके वही बाजी करवा के तो अंतर करवा उनके लिए आज हम लोग दिनों भाव को स्मरण करें प्रिय भाव भाव को प्रकट करें। एक विवाह किसके हृदय में होगी श्री गुरुदेव सुंदर भाषण में उन्होंने बताया जी विवाह में जितने विवाह गुरु बाबू के साथ संबंध किया प्राप्त किया उनके हृदय में उतने ही परिवार जीवन जब तक संबंध के और उनके परिवार द्वारा वो नहीं हो विवाह नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुदेव आगे
बात तो और यह विरह जिसके हृदय में होगा उसकी गुरु भक्ति को उन्नत समझो और वह जल्दी ही से भगवान के चरणों की कृपा पाओ। गुरु कृपा के बिना नहीं होगा। मैं पूज्यपाद बामन महाराज जी और पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी से के साथ में 60 से अधिक वर्ष तक रहा। विभिन्न प्रकार से हम लोगों का परस्पर संपर्क था, एक दूसरे को बहुत से निकट से देखने का सुयोग मिला। कैसे वो लोग गुरु सेवा करते हैं ये भी निकट से देखने को समय मिला। गुरु महाराज जी के लिए बामन महाराज अपने प्राणों को हथेली में लेकर के काम करते थे। गुरु महाराज जी बामन महाराज जी की सेवा से अपने को ऋणी समझते थे, इसलिए जब कभी बीमार हुए यहाँ उसमें गया प्रेस में कैसे विरह में रोने लगे, गुरु महाराज जी रोने लगे। जो गुरु अपने शिष्य के लिए रोता है तो समझो कितना उसके हृदय में। मैंने त्रिविक्रम महाराज जी को देखा, बामन महाराज जी को और हमको कोई दायित्वपूर्ण काम नहीं देते थे। यदि कोई दायित्वपूर्ण काम होता तो त्रिविक्रम महाराज को देते, और त्रिविक्रम महाराज जी सहज ही वो नहीं लेते थे, से तर्क वितर्क करके तब लेते थे और जिस काम को लेते थे उसको पूर्ण करते थे। इसलिए गुरु महाराज जी का हमारे बामन महाराज जी पर ये भाव था, ये अभी बच्चे हैं कुछ नहीं कर सकते, किंतु त्रिविक्रम महाराज के ऊपर उनका भरोसा था। ऐसे ऐसे सब देखे हैं हम, और भी निकट सबसे देखा है। जब पूज्यपाद बामन महाराज जी गुरु की सेवा के लिए क्या नहीं किया। यदि किसी को भजन करना है, गुरु के प्रति निष्ठा करना है, तो ऐसे ही निष्ठा की आवश्यकता है। ऐसी निष्ठा नहीं होने से भजन नहीं हो सकता है। इसलिए 60 वर्षों में उनके साथ रहने से तुम लोग कितना दिन रहा उनके साथ, बहुत कम, और निकट से नहीं गुरु के रूप में दूर से रहा। और हम मित्र की भांति उनके साथ में जीवन में घुल मिल करके उनके साथ में हम, इसलिए उन लोगों के समय संबंध में अपने गुरु महाराज जी के जीवन के चरित्र में मैंने कुछ कुछ लिखा है। जहां जहां गुरु महाराज जी प्रचार में जाते वहां पर त्रिविक्रम महाराज, मैं अथवा बामन महाराज, और पहले बामन महाराज और मैं जाता। मैं समझता था कि मैं दौड़ने में सेकंड कभी नहीं हुआ, बहुत तेज दौड़ने वाला, और बामन महाराज जी खूब चलते थे। किंतु जब गुरु महाराज जी मेदिनीपुर के मार्ग में जब चलते थे तो हम दोनों आदमी पिछड़ जाते थे, उनके साथ में नहीं चल पाते थे। उस समय मैं रसोई बनाता, बामन महाराज जी सब प्रकार से और दूसरी सेवाओं को करते, उसमें मन बर्तन तक मलता था, और उनके साथ में वक्तृता करते मैं लिखता था, छायाचित्र दिखलाता था, सभी काम हम लोग करते। इसके बाद में फिर त्रिविक्रम, जब बामन महाराज जी को प्रेस का डिपार्टमेंट दे दिया गया तो त्रिविक्रम महाराज जी जाते थे। बहुत से उन लोगों से हमने शिक्षाएं लाभ की है, ये दोनों हमारे शिक्षा गुरु हैं। इनके संबंध में जितना बतलाऊं मैं तो उनका ऋणी हूं, मैं उनके ऋणी से मुक्त नहीं हूं। अब शुरुआत जी खेत में कुछ बोले, एनी ट्रांसलेशन नीडेड? हाँ हाँ, इन वेरी शॉर्ट ट्रांसलेशन करे थे।
বলো সচিন প্রভু এসছে
কোথায়,
অকিন্দ্র মিনিং তো আছে, এ পাশে মিন্দির তো পাশে আছে,
मधु आज
and told that I want a
editorial note. The Guru Maharaj told, oh, you should write. And he used to dictate at once. And in a few minutes, he used to write about four pages. And then Bhavan Maharaj so corrected language that it had nothing to correct. And it was given to praise, and second day it was published.
Om
ছোট্ট একটি দুটি ঘটনার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে
আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করার যে প্রয়াস তার জন্য আমি প্রতিবাদ। কথায় আছে মর্নিং সংস্থাটি সকাল দেখলেই বোঝা যায় দিনটি কেমন যাবে। যে খাতা পায়খানা তাকে কেন্দ্র করে বহু সেবা সাংঘিকদের মাধ্যমে গুরু মহারাজ তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আপনার সিদ্ধান্ত পরিধানে প্রতাপপুত্র রাজা সম্বন্ধে একটি কথা নিশ্চয়ই শ্রবণের সুযোগ পেয়েছেন, উত্তম হইয়া করে নিজের সেবন অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন। বাল্য অবস্থায় বাচ্চা শিশু তিনি খাটা পায়খানার মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য সেই পায়খানার কামলা থেকে পায়খানাগুলিকে বের করে আনতেন। বিনা দ্বিধা অর্থাৎ দ্বিধাও দিয়ে চিকিৎসা কোনো রকম কিন্তু কান্ত না করে তিনি অতি প্রত্যুষে এই যে সেবা সমস্ত পরিচয় দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রী গৌড়ীয় বেদান্ত স্বামীজির তরুণ প্রতিষ্ঠিত হলে পরে অষ্টদিয়া পরম গুরুদেবের নির্দেশনায় একটি কথা তখন শুনতে পাওয়া যায় যে কি করা যায় এই তরুণের নির্দেশনায়। তখন গুরুপাদপদ্মের অর্থাৎ তরানন্দন গৌড়ীয় অভিনাম নামে খ্যাত অষ্টদী গুরুপাদপদ্ম তিনি বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন যে তরুণের যে সাক্ষী এবং সত্য স্বরূপ সেটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সেই জন্য জয় নবদ্বীপ নবপ্রদীপ প্রভাব প্রাসঙ্গ হলৈব শিব স্বান সংঘাত সুত্তধারী চৈতন্য চন্দ্র ভগবান মুরারি। সময়ের অভাব বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না, আপনারা পরবর্তীকালে এগুলি বিশেষভাবে শ্রবণের সুযোগ সৌভাগ্য পাবেন। কারণ পরম গুরুদেবের মনোবিষ্ট পূরণের জন্য গৌড়ীয় অভিধান নামে যিনি খ্যাত অর্থাৎ শ্রীরূপী নয়নমণি তাহার বিনোদ তুমি তার নিত্য পারিষদ পরিকর এই কথা জানিয়ে গুরু বৈষ্ণবের চরণে পুনঃ পুনঃ বাক্য পুষ্পাঞ্জলি এবং শ্রদ্ধা করে গেলামন্ত্রে তিনি মাঞ্ছা
उनको जो मैं की अनुभूति होती होगी उसका वर्णन भी कोई नहीं कर पाया उसका। ऐसा ही मेरा और ओम विष्णु अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री मानंद गोस्वामी महाराज का संबंध था। मैं कभी भी उनको नित्य लीला प्रविष्ट नहीं कह सकती, वो मेरे हृदय में मेरा जीवन ही हो, मेरे प्राण हो, मेरी सांस है। फिर भी मैं जन्म जन्म से इतनी कपट हूँ, इतना मेरा आचरण गलत रहा होगा कि मैं अभी तक जीवित हूँ। श्री गुरुदेव मेरे दीक्षा गुरु तीरथ स्वामी भक्ति वेदांशी नारायण गोस्वामी महाराज ने जब मुझे अपने लाभ प्यार से पाठ पुस्तक बढ़ा दिया, तो जैसे परिवार के एक बच्चे को उसके पिता चाचा नाव सब स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही मुझे पूज्य पाठ श्री वामन गोस्वामी महाराज और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने स्वीकार कर लिया। मैंने कभी इन तीनों को अलग देखा नहीं। जो कुछ भी गुरुदेव के मन में भावना आती थी, मैंने वही सब कुछ वामन गोस्वामी महाराज के हृदय में देखा। आज जीवन महाराज बहुत पुरानी बातें कह रहे थे, तो मुझे भी याद आ रहा था कि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो उस समय मठ में स्त्रियों का प्रवेश संभव नहीं था। मुझे प्रारंभ समय में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब शुभानंद प्रभु और नवी प्रभु सुधन्य प्रभु इत्यादि ने श्री वामन गोस्वामी महाराज से मेरा परिचय कराया कि महाराज ये यहाँ पे भागवत में रिसर्च कर रही है, तो उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई और शिवानंद प्रभु से कहा शिवानंद इसकी सहायता करना। और आज शिवानंद प्रभु मेरी हर संभव सहायता करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें मेरा वर्चस्व ज्यादा प्रकट हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रकट हो जाता है कि गुरु की आनंद की कृपा कितना जीवन में प्रभाव डाल देती है। श्री वामन गोस्वामी महाराज करुणा की विपरीत मूर्ति थे। मैं जब नवनीत धाम में थी तो उनके शिष्यों ने मुझे आदेश दिया कि दीदी तुम गौरी पूर्णिमा के दिन धाम बनाना, गौरी पूर्णिमा में भक्त दीक्षा संन्यास लेते हैं। मैं कहा ठीक है प्रभु जी। जब मैं नागपुर के कक्ष के पास प्रणाम करने गई तो तत्कालीन उनके जो शिष्य थे उन्होंने मुझे कहा दीदी आप आई क्यों नहीं। मैं कहा मतलब, बोले आज गुरु जी ने आपको तीन बार याद किया था, इससे ज्यादा और मेरे लिए क्या हो सकता है। उस दिन से मैंने स्त्री तो भुला दिया, मधु तो भुला दिया, बस मुझे ये याद रहा कि मैं उनकी और मेरे हैं। श्री नारायण गोस्वामी महाराज से मुझे आज भी डर लगता है, लेकिन उनके साथ मैं बहुत बहुत संरक्षित और सुरक्षित पाती थी। मैं अपना हृदय उनके साथ अभिव्यक्त कर सकती थी। जब वो जयपुर में रह रहे थे और मैं वहां पर गई तो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट करीब आधा घंटा उन्होंने मेरे ऊपर से अपनी नजर नहीं हटाई, कृपा दृष्टि का वर्षण करते रहे। मैं रोती रही। वहां पर जनार्दन महाराज खड़े थे, उन्होंने कहा कि इसको भागवत सुनाओ। तो उन्होंने कहा ये तो जानती है, तो रिसर्च किया है। कोई नहीं तो भी सुनाओ। और आप मैं देख रही हूँ कि वही आदेश मेरे गुरु ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं गुरुदेव के संपर्क में भागवत की रिसर्च के कारण आई थी। और भागवत जिसको शिव और ब्रह्मा भी समझ नहीं पाते, मैं उसके लिए प्रयास कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनका आशीर्वाद है और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। इन सब बातों को कहने से मेरा वर्चस्व नहीं, उन लोगों की आयतों की कृपा जिनको मैं सम्मान आदि है और प्रयोजन के रूप में रह सकती हूँ, मेरे पर कृपा वर्षण कर रहे हैं। श्रीमान त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज से भी मेरा अंतरंग संबंध था। वे बड़ी हंसी मजाक की बातें किया करते थे। एक दफे मोदी भवन में रात को बैठे थे, 8 बजे मुझे बुलवाया और बोले कि मैं तो बरसाने जा रहा हूँ, मेरे को छोटी अटैची चाहिए। तो मैं कहा महाराज इस समय रात को 8 बजे? बोले अभी तुम्हारी सोचने की बात है। तो मैं बाहर रही सामने रामचंद्र प्रभु दिखाई दिए कि प्रभु जी ये बड़ा अजीब सा आदेश है, कैसे करूँ क्या करूँ। तो वहां पे एक दिल्ली वाले कोई खड़े थे, शायद गोकुल शेट्टी या क्या तो कोई, उन्होंने कहा कि मौका ना है अभी इसकी। अभी मैं गई और फिर वहां पर उनके अनुसार एक छोटी अटैची लेकर आई। जब उनको दी तो ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई बच्चा कोई चीज को मिलने का रह जाता है। एक दफे वो मोदी भवन के बाहर बैठे थे और कोई असभ्य अभद्र व्यक्ति वहां बैठा था और हमारे गुरु वर्ग के ऊपर खूब बड़ा बातें कर रहा था और कह रहा था भक्ति करके क्या होता है। तब एक सज्जन वहां पर आए और उन्होंने श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को एक दोनों की गड्डी दी। उन्होंने बड़ी मजाक करते हुए कहा कि भक्ति करके देखो ये होता है, लोटो को हिलाने को मैंने बताया। तो इस तरह की कई प्रकार की बातें वो लोग किया करते थे। श्री गुरु तत्व हृदय में अनुभूत होता है, उसे वाणी से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जैसे वेद पुराण उपनिषद भगवान ने प्रकट किए हैं, उसी प्रकार से भगवान गुरु वर्ग को इस संसार में भेजा करते हैं। गुरु में कृष्णत्व होता है और कृष्णत्व के बिना गुरु तत्व हो ही नहीं सकता। श्रीमान बावन गोस्वामी महाराज से मेरे अनेक अनेक स्मरण जुड़े हुए हैं, उनको प्रकट करने से मेरा हृदय कंपित होने लगता है। मैं श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में बार बार अनुरोध करती हूँ कि आप इस असहाय जीव को संभालें, इस पर अपना कृपा वर्षण करें, नहीं तो ये जीवन एक बोझ की तरह, एक भार की तरह, एक सांस की धोखी की तरह चलता चला जा रहा है। वाणी संकट करूँ हर्ष के पास सिंधु में ये क्या पति दाना बाप में भी होगा।
बहुत अभी चुचुड़ा के सचिव बाबू सचिव प्रभु कुछ पुष्पांजलि अर्पित करें। जल्दी आ सो सीधे
শাস্ত্রে বলেছেন যা অত্যন্ত বিদুষ বর্তিতা
সংকীর্তন বলে না, সেই দিন থেকে আমাদের পক্ষে খুব সহজ হয়েছে। যাই হোক, আমি অধিক এমন বৈষ্ণবের কৃপা অহৈতুকী কৃপা এবং তাদের যে দয়া অবন্ধ দয়া দয়া, এর মধ্যে মন দেওয়ার কোন বেশ নাই। যেরকম এই আজ থেকে সাত বছর পূর্বে তখন আমার বয়স ছিল 84 বছর, তখন বামন মহারাজ বয়স ছিলেন 80। আমি আর নাম প্রথম ভাবে নিষেধ করি, প্রথম পরিক্রমা দিয়ে সব পরিক্রমা পার্টি বেরিয়ে চলে গেলেন। আমরা বাসে চলে যাবো জিনিসপত্র নিয়ে, সেখানে মহারাজের ঘর ফাঁকা, আমরা সবাই মহারাজের ঘরে গেলাম। আমাকে দেখে পূজ্যবাদ মহারাজ কত বয়স হল, 84 বছর। দেখেন আমার 80 বছর বয়স, আর আমাকে তিনজনে ধরে নিয়ে আর আপনি কি সুন্দর করে আপনি বলছেন, আপনি সবাই হবেন বললেন। আমি বললাম মহারাজ এইখানে এসে একটা পায়ে আঘাত লেগেছে, যাই হোক তার জন্য মহারাজ ভগবানকে ছেড়ে দিয়ে, ভগবানকে যদি মাফ হয়ে যায় জগতের সব মাফ হয়ে যায়। কাজে এইভাবে আমাদের উপদেশ প্রদান করতেন। আচ্ছা, আমার পুত্রবার তীর্থ মহারাজ অনেকদিন আগে হরিদাস প্রভু সেই হরিদাস বাচ্চা অবস্থায় মঠে এসছে। তারপরে একদিন কীর্তন হচ্ছে, বৈষ্ণব বন্দনায় আছে, প্রতি জন্মে করি আমরা প্রতি জন্মে করিয়া তুমি জন্মে জন্মে এইভাবে শিক্ষা দিতেন, তাদের কথা বলে অপ্রাকৃত তাদের চরিত্র উপদেশ যেমন প্রভুপাদের উপদেশ আছেন, আমাদের গুরু মহারাজের উপদেশ করিয়াছেন, ওনারও উপদেশ আমি তো আমি মাসিক পত্রিকায় দিয়েছিল, আমি লিপিবদ্ধ করে লিখেছি, সেইটা আমি বলবো আপনারা যখন
হাতে গিয়ে পরিণামের মরা হাতে গিয়ে যদি জাগতিক কথা হয়
কি বললো আমি শুনতে পারলাম।
উনি বলতেন যে গুরু মহারাজ আমাকে মঞ্জুর লালি বলে আমি মিনু বলবো না, আমি মঞ্জুর লালি বলবো, তারপরে আমি তোমার বাড়িতে যাব কালকে। উনি বলছে আমার বাড়িতে তো কিছুই না, আমি কি ব্যবস্থা করবো, বলে এই নাও 500 টাকা, তুমি আমার জন্য কুমড়া আর কুয়াশ কিনে আনবে। তারপরে এখন ওইসব কথা বললেন, আর বলছে আমি বাড়িতে কেউ আসতে দেয় না, আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি গুরু ভাইদেরকে দেখবার জন্য, যে গুরু মহারাজকে আমি আর শুনতে পাচ্ছি না, তো কমসে কম গুরু ভাইদের দেখে আসি।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা পূজ্যপাদ বামন মহারাজ আর পূজ্যপাদ বিক্রম মহারাজের সম্বন্ধে যেরকম হয় তাহার জীবন চরিত্রে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে দিয়ে বলছি, এখানে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে এই সব কিছুই হবে আমি পূর্ণরূপে জানি, পূর্ণ বিশ্বাস। ওখানে পূজ্যপাদ বামন মহারাজ দীর্ঘতিথি মানাবে কিনা আমার সন্দেহ। এখন বর্তমান আচার্য পর্যটক মহারাজ নিজে ব্যাস পূজা ওখানে তে করাবে, কিন্তু বামন মহারাজের এই সব কিছু কোন কিছুই করবে আমার জানা আছে। আর বিশেষ করে পূজ্যপাদ বামন মহারাজের শিষ্যগণের যেরকম হয় আমি প্রীতি করি, ওখানে প্রীতি করবার কোন লোকই নাই, একেবারে কোন লোকই নাই। এই জন্য ক্রমে ক্রমে ওখানকার পূজ্যপাদ বামন মহারাজের শিষ্যরা আমার নিকটে ক্রমে ক্রমে আসছে। আজকে আমি খুব আনন্দের যে সুবিধা থেকে যেরকম ভাবে সম্মান করা হয়, তাহাদেরকে আদর করা হয় গৌড় বেদান্ত সমিতি, তাহাকে উপেক্ষা করে বলকি মন্দির থেকে তাহার গুরু পরম্পরা থেকে ফটোটাই সরিয়ে দেয়। এমন এই জন্য তারা পূজ্যপাদ বামন মহারাজের প্রধানতা দিবেন, চাইবে সে গুরু পরম্পরার মধ্যে সে গুরু মহারাজের পরে আসবে। আমার পরম্পরা ঠিক আছে, গুরু মহারাজ বামন মহারাজ তারপরে আমাদের, এইরকম পরম্পরা থাকবে। সারা বিশ্বের নিকটেতে গুরু মহারাজের আর পূজ্যপাদ বামন মহারাজের চিত্র সব আমার ভক্তদের ঘরেতে দেখতে পাবে। এমন বিশ্বেতে কোন আমার ভক্ত নাই যার বাড়িতে পূজ্যপাদ বামন মহারাজের চিত্র দেখবে। পর্যটক মহারাজের শিষ্যের নিকট কারো কাছে আমার এখানে যেরকম কথা আলোচনা হচ্ছে, হরি কথা হচ্ছে, ওখানে বর্তমানে সব চৌপট হয়ে গেছে। যা হোক, তোমরা এইরকম হয় গুরু আর বৈষ্ণব, গুরু আর শিক্ষা গুরুকে অভিন্ন জ্ঞান করে দিয়ে ভজন পথে অগ্রসর হোক। আর আমি দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন যে আমার এখানে যারা আছে তারা সেই রকম হতে আচরণ করে, ভক্তি রাজ্যেতে অগ্রসর হচ্ছে, আমি তাতে খুব প্রসন্ন। আমি আমাদের নদী পরিক্রমা করে শিলিগুড়ি যাব, ওখানকার সব ভক্তরা নিবেদন করছে। গৌহাটিতে শিলংয়েতে আমাদের লোক ডাকছে, কিন্তু সময় হচ্ছে না, দুর্গম রাস্তা শিলংয়ে ওখানে যাওয়া, তবে তোমাদেরকে ওখানে পাঠাব। এরপরে উমা, উমা কিছু বলবে,
তুমি বলে জানি কিছু জানি।
বাল্যকাল সে হরিনাম লেকর নিষ্ঠা কে সাথ মে মথুরা মে হমারে পাশ মে ভজন করতে হমারে পাশ মে রহতি হ্যায় তো উনকে শিষ্য কুছ লোক উল্টা সিধা করতে হ্যায় যে গুরুজি কো ছোড় করকে মহারাজ কে পাশ মে রহতি ইসকো অনাদর করতে হ্যায় আর বামন মহারাজ ইসকো বহুত হি অন্ত তক বহুত প্রীতি করতে
গুরু ভাই বলতেন উমা মা মা
কত সৌভাগ্য
Still, there is some speciality. In the same way, there is no difference between
Diksha and Shishiguru, but still there is some speciality. Because towards the Diksha Guru, there always must be some maljada, feelings of all levels. But towards Shishi Guru, those feelings of all levels are not present. They will say, I want to speak to you about Srila Chaitanya Mahaprabhu. Of course, Srila Balu Maharaj, we have also took me and Srila Sajan, Shripad Sajan Maharaj, so we also like took sannyas from him also in one way. So many devotees have spoken about him. His mercy is always upon us. But giving pranam to that, I want to speak to you about Srila Chaitanya Maharaj. So he was born in a very high Brahmin family. His parents were very strict Vaishnavas. He said, without washing the shalagram, even they would not drink one glass of water. So, Uttar Maharaj, his Purva Ashram, his previous ashram, his name was Radhana Das. So, Buddha gave me that Brahmachari name also, Radhana Brahmachari. So, one time Maharaj asked, what's your name? I said, Radhana Das. He said, my name also was Radhana Das. So, I said, does that mean when I become big, I can become like you? So Maharaj was very expert in astrology, expert in mathematics, expert in Sanskrit. He was a first class homeopathic doctor. He used to say, well, yeah, I'm coming from Parikrama, I have to do my seva, because all the devotees would always become sick, and Maharaj would always, every afternoon, he would give all the devotees different types of medicine. So one time Srila Maharaj used to say to me, you know my main seva? My main seva is thinking. I have to think for the whole Vedanta Samiti, because in Vedanta Samiti, no one is thinking. Yeah, well, I have to think for the whole Vedanta Samiti. So one thing I especially noticed about Srila Maharaj, Trinadami Samichina, Glory Vasavishina, Madhya Namada, Vakitam Yasarahani. Even though Vaishnava is most exalted, still they always consider themselves to be the most insignificant. And we are the complete opposite. Even though we really are insignificant, we can see ourselves to be the topmost. There was Srila Maharaj, even though he was, I cannot really at all comment on Srila Maharaj's bhajan on his eternal life, because he always kept himself very, very covered. In fact, it appears that Maharaj used to act in such a way that everyone would think that he was completely opposed to like intimate topics and the service of Radha Krishna. Therefore, he was always very strict. It was very wonderful when Gurudev and Srila Chaitanya Maharaj would come on Parikram and they would discuss so many things. So even though Srila Chaitanya Maharaj always used to appear to be very disinterested in Gurudev's Harikatha. In fact, we knew how high Gurudev would speak and how nice was Gurudev's Harikatha. That much Srila Chaitanya Maharaj would appear to fall asleep. That much he was disinterested. So especially Srila Chaitanya Maharaj was responsible for the high class of Harikatha we used to hear on Parikram. I remember one time in another week, then Puttabhad Guruji, Srila Balu Maharaj, Srila Chaitanya Maharaj were sitting together. Then Srila Balu Maharaj, he gave Srila Chaitanya Maharaj the mic to speak the first day of Parikram. Then Srila Chaitanya Maharaj said, I have one question. If Radharani is the topmost, then why Krishna leaves her and goes to Chandravani? And that was the end of Srila Maharaj's Harikatha. But I remember Srila Balan Maharaj was. When Gurudev spoke 7 days of Radhatattva. So Srila Maharaj had not been there, no Radhatattva. Therefore, Maharaj always knew how to pinch Gurudev to extract the juice. Therefore, he would always take the side of Krishna. And Guruji would always take the side of Srimati Radhika. Then especially we used to go to the top of Vashana, there is one, what is it called, scale. One Brahmin, he wanted to marry his daughter, therefore he prayed to Srimati Krishna, please give me some wealth. Then Sri Krishna said, my only wealth is Srimati Radhika, and he gave that to the Brahmin. Then Sri Chaitanya Maharaj would say, this is proof that Brahmins have no regard for Srimati Radhika. Because that is from the Brahmin family. And Srila Chaitanya Maharaj, all hair was falling out. Then Gurudev said, and you will not understand Radhatattva, you can become 80 years old or more. Because of the Kualba. They were very wonderful, Harikatha used to be. And even though, of course, it was all joking,
একবার বসানাতে আমি তো আশেপাশে বুঝতে পারবো
how much affection he used to give to us. And not all brahmacharis, if you think Srila Maharaj was like a big brother, because he was very intimate, he would talk, and we could reveal our hearts to him very nicely. And Maharaj always gave the perfect advice. Then I'm hearing from Srila Gurudev, what is the responsibility of Shiksha Guru? These days we see so many Shiksha Gurus taking all disciples for themselves. But the real job of the Shiksha Guru is to take the disciple and place on the feet of Shikshaguru. Now remember, before Gurudev used to chastise me so much, but now he's stopped that. Thank God. My mind sometimes is pretty very disturbed. And so I would often go to Srila Srivastava Maharaj and complain. And Srila Srivastava Maharaj, from the beginning to the end, only one advice, always follow the instructions of the Divine Master. It was Srila Srivastava Maharaj never gave any other instruction. Never, even though he was such an exalted person, still, he took a vow, I will never accept any disciples. One time I asked Maharaj, you are not accepting disciples. He said, I don't have to accept any disciples. He goes, all Narayana's disciples, they are all my disciples. So I don't have to do any disciples. But one time I asked him, Maharaj, you are not giving disciples. Then Maharaj said, even though I heard Srila Padma Guruji wanted to make him acharya, wanted to make Srila Gurudev acharya, then all were declining. We will not accept. Srila Srila Maharaj said, I am not qualified, you should give to Srila Padma Maharaj. Srila Padma Maharaj said, I am not qualified, you should give to Srila Narayana Maharaj. They were none of them wanted any position. They were without smriti for 50 years, went very peacefully because there was no fighting. But as soon as Srila Srila Maharaj left, that next governing then, all the snakes that lifted their head. Because if Srila Srivastava Maharaj was there, they could never say anything against Srila Gurudev. But Srila Srivastava Maharaj left, and Srila Padma Maharaj absorbed in his own bhajan, then they took the dhansamiti from Srila Gurudev. Anyway, so a little bit about my one or two stories I want to tell. Very, very instructive. It said one time I had good fortune, whenever we would go to another week, then I would always stay in Srila Maharaj's room. So one time there was no room, and I said, Maharaj, where will I sleep? And he went to his bed. You can sleep here with me. One time one Babaji came into his room. Then he was from Gaudiya, but he was a little different type of fellow. Then he somehow snuck into Srila Maharaj's room and was sleeping there. That time Srila Srila Maharaj's servant was Radhakanta. Radhakanta! Maharaj would always call. Then Srila Maharaj was chastising me, why are you putting him in my room? And I was thinking, why Maharaj is upset? Then this Babaji, all night he would chant. I know because I was trying to sleep. And all night he was chanting. And he would never eat anything, only some fruits. And then I started thinking, maybe this devotee like Paramahamsa, because not sleeping, not eating, always chanting. So I was developing like some faith, some respect in him, but he must be like Paramahamsa. Then one time Srila Maharaj called me over. He said, you know that Babaji, he is Sahaja. He has left the feet of his Gurudev. He went to Radhakunda and took that Siddha Pranali. But the pure name is not coming because when he chants, he sleeps. Then when he was acting in his Gurudev's Paramahamsa, Srila Maharaj knew he was a complete pretender and an offender. That time I had some understanding. Maharaj, he sees everything. Who is doing what? Then he was Grihastha, but when he heard the teachings of Sri Narottama Dasa Guru, that is also Sri Gurudev's Vasudeva Guru, that on that preaching party where they collected Gurudev, then Srila Shukra Maharaj was on that preaching party. Then he said, because Gurudev didn't know Bengali, then he was from Bihar. And Srinarayana Puri's mother language was Bengali, then English was in, the Katha was in English. And Srila Shukra Maharaj used to say, from that first time he knew this, Narayan Tiwari, he is different, because he has so much interest in hearing Bhagavad Katha. So Srila Shukra Maharaj, after hearing his Hari Katha, then he left everything and came to the mat. One time I asked him about his previous Buddha ashram. Then Maharaj said, when I left my home, all were weeping. My mother was crying, my father, my brothers, my sisters, my wife, my children. All were weeping, but I never turned around. I never looked at them again. And he said, let the dead bury the dead. So he left everything and came to the mat. That time his wife was very dear to Srila Gurudev. She would come and weep and would wash his shoes with her cloth. And I heard someone said, and someone said to Maharaj, oh, your wife is using very bad language against you. And he said, I'm also doing to her. So his wife came and said, if you do not accept me back, I will commit suicide. I will commit suicide by fire. Then Maharaj said, okay, if you have the kerosene, I have the matches. Are you ready? So he was very, very strict and ideal sannyasi.
Get out of here. You are completely opposite. You are coming here to do parikram to enjoy. You have not come to serve. Then Maharaj abused him, and he left. Then that Srila Maharaj was very happy. He said, you know who that man was? No, Maharaj. He is a multi-millionaire. He said, because I do not need one rupee from him, I speak as he likes. Then he said, can you run, Maharaj, do you like that? So, for some reason, I don't want to get into too much trouble. I tell you one example. Sometimes you cannot understand Gurudev. Because Sambhadana is there, the reason we serve Gurudev is we have taken mantra from him. But the reason we serve Shikshaguru, we have not taken mantra, but we are serving out of pure love. Therefore, sometimes we cannot understand Shikshaguru is Mahabhava, and we are like Kanishtha Adhikari. There were sometimes Gurudev may act or speak in such a way that we cannot understand. That's why we should take shelter of the Vaishnavas. Srila Gurudev always says, serve Guru under the guidance of the Vaishnavas, otherwise you cannot be successful. For example, I think, I can do Gurudev's service better than Pujapad Madhava. Is it possible? Impossible. Then we should always do service to Guru under the guidance of the Vaishnavas, otherwise we only become proud, false ego. I want to tell one more story, then I'll finish here. After parikramin, Devananda Gaudiya Math, then Maharaj would go back to his brother Kutir, his guru. That's another story. So Maharaj had many, many things, pressure cookers, blankets, spare hats, many fire walking sticks, umbrellas. And he said, Maharaj, when he's leaving, he said, I am going tomorrow. How by train? And I said, no, I will go by taxi. Then one devotee was asking, can I come with you? So I thought, this is not, I should not be selfish, okay. Then that devotee went to Gurudev and gave pranam. Then Gurudev said, where are you going? I'm going, Gurudev, where are you going? I'm going to Radhanath to come up to Pujapati Shukra Maharaj's brother Kuti. Then Gurudev was very angry, shouting, call Radhanath here. So that time that devotee, he was shaking, he said, Gurudev wants to see you, he is not happy. Then I was also began shaking. Then I went in the room, and Gurudev was, you are so independent, you never do anything under my guidance. Maybe you should go somewhere else and take Diksha with you. Very strong words. And I was like shaking. I thought I would leave my body. Then I went to Srila Shukra Maharaj, and he saw me, I was completely white like a ghost, and shaking. And Srila Maharaj laughed. He goes, that means permission was not given. And I said, Maharaj, this is no joke. Gurudev said he would protect you. I can go anywhere else and take diksha from any other Gaudiya Math. And Sri Maharaj began laughing. He said, don't worry. This is like Rukmini and Krishna. Krishna said to Rukmini, oh Rukmini, I'm not told you should go somewhere else and marry. So Sri Maharaj just laughed. And he said, sure, let's go. So Sri said, when Guru was chastising me, I remember, when Guru was chastising me, I said, Guru, I already gave my word, I promise. How can you take my promise back? And Guru said, okay, you can go, but don't stay more than 5 minutes. So we went to Maharaj's Bhattakuti and we stayed there 3 days, I remember. Then Guru was coming to Chinchura, then Sri Chinchura Maharaj last, he said, hey, let's go, 5 minutes is almost enough. Lastly, that time, there was Chinchura Gaudiya Math. So something had happened with one brahmachari there, some disturbance, and they wanted to kick him out. So Sri Chinchura Maharaj said, if you kick him out, then I will also go. And they said, okay, you also can go. So Maharaj moved out and was doing bhajan by himself. So I remember that last time we went there to Chinchura Gaudiya Math. Then Maharaj went into his room and he was collecting some old things full of shoes, junk, everything, books. Then Maharaj was collecting and he filled one this small bag. Then he turned to me and said, he's looking, when is the auspicious time to go? Because astrologically. Then he said to me, in Chinchura Gaudiya Math, I am here 60 years. Everything you see here, I built. 60 years I served this man, and now they are kicking me out. Then he laughed. Oh well. He said, the father dies and the sons enjoy. Let's go. So unattached. There were Gurudev also so unattached. Devananda Gaudiya Math, so many 24 temples, so many brahmacharis. The Gurudev also walked out with nothing. So, this is so many instruction for us. So, if I said anything, Gurudev is. But I'm most unfortunate, I'm not remembering Maharaj very much. Even though he gave me so much affection that I'm not catching, that I pray the mercy of Gurudev Vaishnavas, my heart can have a small place for them. Because Guru Vaishnava Rati Namoy Dharma, unless we have affection for Gurudev and the Vaishnavas, then Kirupa Seva Pare Mui Glacha. How can a fallen person achieve the service of Nirmala Kirinari unless we, our heart has a small place for Gurudev and the Vaishnavas? Therefore today we pray the feet of Sri Lama Maharaj and Sri Chivita Maharaj. They can always keep their merciful glance upon us, protect us from our own faults and anathas, and we may slowly, under the guidance of Gurudev, progress in our bhakti. Go play one and two.
Pujapat Trivikram Maharaj, kono samay tahar mata pita asle mothe, रूढ़ भावे तहार संगे व्यवहार प्रीतिपूर्वक दंडोत प्रणाम करा सब करते हैं महाराज जे हो पिता माता तो तहर आदर करा उचित तो जे तुम्हें बुझो ना आपनी बुझे ना ये संगे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करी तो माथा चढ़े जाए सब समय आसबे आमार भजन निष्ठा সব নষ্ট করে দেবে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করবে এই জন্য এরকম ভাবে রূঢ় হবে তিনি অত্যন্ত বৈরাগ্যবান ছিলেন এই পর্যন্ত একটা ফতুয়া মতন আর কাপড় এই ঘটনার উপরে পর্যন্ত পড়তেন ভালো রান্না জানতেন ফার্স্ট ক্লাস চুচুড়োতে বার্ষিক উৎসব হলে নিজে থেকে রান্না লাগতেন রঘুনাথ বলেগা জগন্নাথ জি হ্যাঁ জগন্নাথ ঝা ও চিত্তরঞ্জন বালে হ্যাঁ
When he was paradise to come in more, he never treated them very nicely. And very used to use very harsh word. So the Buddha became unhappy and asked, Oh Maharaj, what may be their parents? Why are you using so harsh word for them? then Pujasana, if you don't understand this fact, if I beloved intimate with them and use very nice word, be very sweetly, then they come again and harass me, take me back in previous village. If I use harsh word, they come here, gradually will stop, will not come. The second one who they told that he was very renounced for his own use, even sleepless, served only up to this much, and told up to me, not more than that. And he was very expert cooker. And he found a very sweet taste of vegetables. When anyone comes from a pichura, he used to engage himself for cooking and I the others for serving. By this way, he spent his life. One thing I have to tell about him. As before, we have no one in Calcutta. I used to come to Madurai to do that from Chichura. When I came first time to Chichura, to come to Madurai to do that, at that time, I came from village, we don't have a pressure cooker. And we cook rice, and when Sadi was going on, he told me, I must learn on the road. He told me, he can serve, he's okay. And then suddenly he told that, after one serve, we have to hit the cooker. Why? My ear is hit my door. I feel like I don't know, I never know about the cooker. The reason of hitting the cooker, then it will not form the gas and it will not work properly. I feel that no, you have to cook twice. That means twice, and no, I have to cook very strong sound. And no, why my ear is hit my door? I don't know, and I went hitting too much, and think my gas. Who are you? I don't know, I think I'm very happy, I just spoke, I am the mother, I am me. What are you doing? I mean, Subhanu told me this is a rule. Subhanu, that's it, Subhanu will not eat anything, my dear, I can't eat it. So, sweet that.
शक्ति सामर्थ्य नहीं है, केवल उनके पांडित देवी के लिए दंडवत हुआ हूँ। मेरे हृदय में कुछ ऐसी थी गुरु निष्ठा वैष्णव निष्ठा सेवा कुछ नहीं है, मैं केवल शून्य हृदय से ही आप लोगों के सामने में दंडवत हुआ। गुरु वैष्णव है तो कृपा करके हमारे कल्याण के लिए प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते रहते हैं। पहले जीवन में जो कुछ भी हमारे शिक्षा गुरु पाप और गुरु की कृपा से ही कुछ मैं अभी तक आप लोग के समक्ष में खड़ा हूँ। मैं अभी कृपा से
हेलो बोलो 5 मिनट।
पांच मिनट मध्य से इसके गाड़ी दौड़ती है तो बीच में नहीं रुकती, इसके कंट्रोल से भी बाहर निकल जाए।
वो जो लड़की आपको वो दे रही है ना बात कर रही है
हम लोग दृष्टिकोण से उनकी भाव की
देखो
जाती
है बात करने
करके
भुवनेश्वर के
गुरु जी का प्रति उनका कितना प्रीति है उनको बाइंड करा, क्योंकि गुरु जी का नाम उनका आशीर्वाद उनका दर्शन उनका प्रीति को जो वर्णन नहीं कर पा रहे थे, बोलते आंखों से आंसू बह जाता था इससे हमको पता चलता है वो गुरु जी कैसे और शिष्य कैसे। और गुरु जी के साथ में शिष्य का इतने गंभीर संबंध है, हम दुनियादारी के लिए आंखों से आंसू बहा सकते हैं लेकिन गुरु जी के लिए आंखों का आंसू बहना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए गुरुपाल कर्म कहा करते थे, कहते एक बटवा सिवा शिष्य का प्रति गुरु का जो संबंध है ये द्वितीय संबंध है वो एक द्वितीय संबंध के साथ में शिष्य का नहीं है। इसलिए चक्षुदान दिला जाई जन्म में प्रभु से तत्व रह गुरुपाद पदित जब तक हम संसार समुद्र से हम पार नहीं हो जाएंगे तब तक गुरु जी पुनः पुनः हम लोगों को आके के अपना संतों द्वारा हम लोगों को आप भगवत चरण में पहुंचाने के लिए प्रचेषा करते हैं। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत है, आप लोग विभिन्न भक्तों का मुकाल से विभिन्न दृष्टिकोण से देखिए भगवान का चरित्र अनंत और अथाह है। जितने सारे भक्त जिस दृष्टिकोण से बोल रहे थे उसमें ऐसे लग रहा था उनकी भगवान की कथा जैसे उस कथा भी अनंत और असीम उनकी कथा है। इसलिए उनका जीवन में बहुत कुछ अच्छे अच्छे शिक्षा है आप लोगों ने श्रवण किया। उन्होंने तो सर्वप्रथम उन्होंने यह शिक्षा दिया, उनको प्रभुपाद ने नाम रखा था सज्जन सेवक है। सज्जन सेवक का तात्पर्य है केवल सेवक नहीं जो सज्जन सेवक, सज्जन मतलब होता है अच्छा सेवक है। आप लोगों ने श्रवण किया जैसे नारद जी की चरित्र उनका चरित्र कुछ बराबर लगता है। नारद जैसे व्यास ने उनको बताया व्यास देव जीवन में कितने बड़ा और इतना रसी इतने बड़े भक्त कैसे बना केवल वैष्णव का कृपा से केवल वैष्णव का सेवा से ही है। इसलिए इनका जीवन भी संपूर्ण रूप में वैष्णव सेवा के द्वारा ही संपूर्ण जीवन बीता। इसलिए कभी वो मथुरा में आए थे वो अपना मुंह से बोल रहे थे, कहते जितने सारे बच्चे मेरे साथ में पढ़ रहे थे भक्ति विनोद इंद्र में कहते कोई मेरे साथ में नहीं है, वो सब चले गए लेकिन मैं केवल अकेला ही टिका हुआ। तो वो बता रहे थे मैं अकेला टिक गया कैसे, कहते इसलिए मैं टिक गया मैंने पढ़ाई को मुख्य मैंने नहीं रखा है, मैंने सेवा को ही मुख्य रख करके स्कूल में जितना समय जाता था उतना समय पढ़ता था उसको बाद में आकर के किताब नहीं खोलता था, उसको बाद में आकर के संपूर्ण वैष्णव सेवा में ही जीवन लगा देता था। इसलिए प्रभुपाद उन्होंने कभी कभी अपना हाथ में चना भी छिलका उतार करके प्रभुपाद दिया, प्रभुपाद खाए, उनका घर की सफाई करना,
वैष्णव का कपड़ा को साफ करना, उनका प्लेट को देना, उनको स्थान को परिष्कार करना, उन्होंने संपूर्ण वैष्णव सेवा ही अपना जीवन में दिखाया। इसको उन्होंने ये शिक्षा दिया, अगर जीवन में अगर हम भी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग को भक्ति कैसे मिलेगी? केवल शास्त्र ग्रंथ पढ़ने पर ही भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सेवन की मुखे जीवा दो स्वयं स्मरण कर दो। जो जितने गुरु वैष्णव का सेवा निष्ठा रूप में जो जितने गुरु वैष्णव का सेवा करेगा, उसका हृदय में तत्व ज्ञान शास्त्र सिद्धांत वो अपनी आप स्फूर्ति प्राप्त होता है, अपनी आप स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए हम भी अपना भक्तों के आदर में देखते हैं, हमारे तीर्थ महाराज, वर महाराज, माधव महाराज, जितने सारे इनको जीवन देखो, संपूर्ण सेवा सेवा ही का जीवन है, प्रेमा पूरा ही सेवा ही है। लेकिन इनको तो मतलब बाहर सारा दुनिया सुन रहे हैं, काम क्या है? क्योंकि काले उन्होंने भगवान को सेवा को ही अपना जीवन सर्वस्व माना। इसलिए कहते हैं हाँ बल हाँ क्या सुनोगे जाए वैसे ब्रिनुते तन लब्धा नया आत्मा पर प्रवचन न लब्धा न मेधया न बहुना श्रुते न जमे वैसे ब्रिनुते तन लब्धा तसे ऐसे आत्मा ब्रिवृत तन स्वा। कि जो ब्रह्म ज्ञान, ये जो भगवत ज्ञान भगवान का ज्ञान है, भगवान बोलते जब मैं इसको कृपा करके ये वस्तु देना चाहता हूँ तभी ये वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो वस्तु प्राप्त कैसे करेगा? क्योंकि भगवान जब सेवा को द्वारा संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होकर जब देना चाहते हैं तब वो वस्तु को कोई ग्रहण कर सकता, अपना बुद्धि विद्या पांडित्य को द्वारा ये वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। ये बावन महाराज का जीवन ये संपूर्ण एक उज्ज्वल दृष्टांत है। इसलिए इन्होंने क्लास में फास्ट आते थे, एक बार इन्होंने स्कूल में पेपर दिया, पेपर अपनी क्लास में फास्ट आए। जब फास्ट आए, जब प्रभुपाद को पास में प्रभुपाद के सज्जन सेवक को बुलाया, बुला के बोला देखो तुम क्लास में फेल हो गए, क्लास में तुम फेल हो गए हो। तो उन्होंने बोले गुरुदेव मैं कभी आपको कृपा से फेल हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा तुम ये बात को कैसे बता रहे हो, मुझे फेल नहीं हो सकता। फिर गुरु वैष्णव का कृपा है, गुरु वैष्णव को मैं सेवा करता हूँ दिन भर, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। फिर प्रभुपाद उनको बुला के पीठ पर हाथ तब दबाए, कहते क्लास में तुमने फास्ट डाले। इसलिए मैंने वैष्णव सेवा गुरु सेवा को जरा कितने तल्लीन अभी आप लोगों ने श्रवण किया, इनको सेवा में इनको गुरुदेव कितने संतुष्ट थे कभी उन्होंने बताए? कहते गौरी वेदांत समिति में जितने सारे सेवक है उनको सेवा को अगर एक तरफ रख दिया जाए, अगर ये बावन गोस्वामी महाराज के सेवक सेवा को एक तरफ रख दिया जाए तो पहला दिखाई पड़ेगा इसका ही भारी है। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया, जब उनको प्रेस सेवा में लगा दिया तो उन्होंने कितने निष्ठापूर्वक उनको प्रेस प्रेस सेवा की। इसलिए इनका जीवन में और जब एक उनको गुरु महाराज गुरु जी ने कहा कि क्या प्रेस में दिन भर उसे हो गए और कोई सेवा नहीं, प्रचार वचार करना नहीं पड़ेगा, तुमने संन्यास लिया। तभी से उन्होंने निकले तो प्रचार करने के लिए संपूर्ण निकल गए। फिर तो प्रचार करके आप लोगों ने जितने सारे गांव में जा करके कैसे कठोर परिश्रम करके उन्होंने प्रचार किया। इसलिए उन्होंने तीन वृद्धन की काम किए, एक तो साधारण वृद्धन और एक बृहद वृद्धन की प्रेस की काम की और एक जीवंत वृद्धन संन्यास रूप में उन्होंने सर्वत्र प्रचार और प्रसार उन्होंने किया है। इसलिए इनका जीवन संपूर्ण सेवा में ही संपूर्ण अपना जीवन को उन्होंने लगा दिया। इसलिए कभी उनको कितना गुरु निष्ठा था, कभी गुरु जी ने कुछ भक्तों के सामने थे उनको प्रश्न किया, उनका प्रश्न था ये बताओ भगवान को हम कैसे सहज रूप में संतुष्ट कर सकते, जीवन में हमें भक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने अलग अलग किसी भक्तों को पूछे, सब भक्तों ने भक्ति तरह तरह का डेफिनेशन दिया, भगवान को संतुष्ट करने का। जब इनको चांस दिया गया तब उन्होंने खड़े होकर के उस लोग में याद नहीं आ रहे गुरु शिष्य से आज था जानता हूँ
गुरु जी को हम कैसे संतुष्ट करें, भगवान को तो हम देखे, इसलिए हम साक्षात रूप में गुरु जी को हम देख रहे हैं। अगर हमारा सेवा को द्वारा गुरु जी अगर संतुष्ट हो गए, समझ लेना चाहिए भगवान भक्ति सब कुछ जीवन में मिल रही है। वास्तव रूप में यही वास्तव सत्य है। इसलिए ये तीनों को जो तीन गौड़ीय वैराग्य का जो मूल स्तंभ थे, ये तीनों को तीन उदाहरण दिया करते थे गौड़ीय वैराग्य संति। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनको तीन उदाहरण दिया। कहते ब्रह्मा जी से बताए, कहते ब्रह्मा जी बताए, वेदांत बाद में बताए महाराज। ब्रह्मा क्या काम सृष्टि करना, कहते महेश कौन है, शंकर जी कौन है, कहते त्रिविक्रम महाराज को शंकर जी का अवतार बताए। हम लोग श्रवण कर रहे थे, कैसे उनको कठोर वाणी और कैसे उन्होंने सारे आदर से खड़े करने वाले, और उसमें जो विष्णु का जो उदाहरण दिया, हमारे महाराज जी को ही इन्होंने विष्णु का ही स्थान पर दिया। सृष्टि करना भी सहज है, संहार करना भी सहज है, लेकिन जो पालन का जो काम, ये कोई साधारण बात नहीं पालन करना। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया, करते बाबा गोसाई महाराज बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उसको टाटी पैसा उनको साफ करके उनको सही रूप में बड़ा कौन करता है, फिर इसलिए महाराज जी बच्चों को, इसलिए हमारे महाराज के अंदर में विशेष गुण है। इसी जगत में अपना शिष्यों को ही अगर होगा, अपना शिष्यों को पत्थर लेकर के जितने सारे सारे सबको अलग अलग कर देते हैं, लेकिन महाराज का अंदर विशेष गुण है, वो अपना शिष्य से वो केवल इसी दृष्टिकोण में देखते हैं, जैसे श्रीला जीव गोस्वामी के पास में नरक में श्याम को श्रीवास, ये तीनों ने आ करके जैसे इनको पास में लालित प्राप्त हुए, तब उसी तरह हमारे महाराज जी को पास में भी जितने सारे दूसरे दूसरे का शिष्य, अक्सर करके महाराज के पास में देखो भक्ति वेदांत बाबू गोस्वामी महाराज का शिष्य ही ज्यादा उनको पास में लालित प्राप्त हो, केवल नहीं मैं और भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत बाबू गोस्वामी भक्ति वेदांत दूसरे जितने सारे दूसरे दूसरे पढ़ के शिष्य लोग महाराज को पास में आकर के सबसे सब लालित प्राप्त हो रहे हैं। जो बुद्धिमान स्वरूप है वो नारायण है, नर मतलब होता है ज्ञान है, सारे ज्ञान का अयन मतलब आश्रय, पर जितने सारे ज्ञान की जो संपूर्ण आश्रय है, इसलिए गुरुदेव जी का जो नाम दिया है, नाम और काम में सचमुच सिंह के बराबर है, नहीं तो संपूर्ण विश्व के दूसरे दूसरे का शिष्य। हम लोगों को ऐसे लगता है महाराज के पास जब जाते हैं, लगता है महाराज का सब तो इतना प्रेम करते हैं, ज्यादा प्रणाम नहीं करते, ये सभी का हृदय में सारे एक शिष्य को पूछो महाराज पास में जो गया है, लगता है महाराज हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम और किसको नहीं करते, ये हमारे महाराज के अंदर विशेष गुण है। इसलिए इनको जो सरकार जो नारायण गुरु जो पालन का जो ये जो काम दिया गया सचमुच से उन्होंने ये पालन को उन्होंने सही सही रूप में उन्होंने गुरु जी को जो नाम दिया नाम और इनका काम देखा थे। इसलिए कभी कभी ये दोनों को इसको जुदिश भक्ति हमारे एक को नित्यानंद प्रभु और इनके महाप्रभु का अध्ययन विधान समिति ने दिया, महाप्रभु को दान किया तो भक्ति विधान सभा आनंद गोस्वामी महाराज और नित्यानंद प्रभु का हमारे महाराज के होता है, ये दोनों विधान समिति के विचार होते हैं, क्योंकि नित्यानंद का जो काम है ये जीव को आकर्षण करके जो नित्य आनंद प्रदान करे, गुरु जी का काम नित्यानंद प्रभु का, इसलिए गुरु जी जैसे उसको साफ सुथरा करके उसको संशोधन करके जैसे महाप्रभु का चरण में डाल दे, उसी तरह महाराज भी जीव का अपना चरण में आश्रय दे करके उनको एकदम शुद्ध बना करके बाहर होता है महाराज के पास में पहुंचा देते हैं। इसलिए उन्होंने और इनका जो जीवन है जीवन में कभी कभी अद्भुत अद्भुत भी इनका जीवन में कुछ पता सुनने को मिलता है। कभी ये जगन्नाथपुरी में थे, जगन्नाथपुरी में रहते समय वहां पर जो तोता गोपीनाथ उस समय जो गुरु जी की विग्रह स्थापना हो रहा था, तो तोता गोपीनाथ कभी कुछ स्वप्न दिया, फिर मेरे को सेवक की कपड़ा ठीक से नहीं पहनाया, मैं फटा हुआ कपड़ा नहीं पहना, तो बोलते हैं मैं बाजार में जाकर के नया वस्त्र खरीद करके मैंने तोता गोपीनाथ में गए, जा रहे थे वहां पर पूजा को बोला कि कपड़ा पहना करके हमको पुराना कपड़ा दो, सचमुच से कपड़ा देगा तो मैं फटा था। कभी साक्षात ठाकुर जी स्वप्न दे करके कभी अगर चावल कभी जला हुआ चावल भोग लगा दिया तो ठाकुर जी कभी उनको स्वप्न दिया, आप जला हुआ चावल भोग लगा रहे हैं। इसलिए बहुत शिष्य वात्सल्यता मिली बता रहे थी। ये तो बहुत सारी गृहस्थ भक्तों को ये धर्म प्रश्न करते थे, तरह तरह से उनको धर्म प्रश्न करते थे। कभी उन्होंने
अंत में श्रीमान माधव महाराज जी ने प्रपूज्य चरण श्रीमद बामन महाराज जी के विरह तिथि के उपलक्ष में एक विरह पुष्पांजलि लिखा, बहुत ही सुंदर है, उसको स्वयं ही पढ़ करके सुनाए।
गुरु महाराज कैसे थे, जैसे श्रीमद् महाप्रभु ने बताया
अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का तिरुभाव है ना, तिरुभाव तिथि टुमारो डे सेपरेशन डे ऑफ परम पूज्यपाद भाई शिक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज टुमारो वी विल गिव पुष्पांजलि इन हिज लोटस फीट
मॉर्निंग
ऑल हिज डिसिपल्स एंड अदर्स कैन बी
Hare Krishna, so many devotees are requested for darshan. So day after tomorrow, 10 AM, darshan will arrange for Rasi and devotee. So biggest looking of Parikrama at this time, Rasi and devotee. So Rasi and devotee darshan will be day after tomorrow, 10 AM. And some devotees are requested for initiation also. Initiation will take place.
I cannot continue.